ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सदा शांति की समान का सीट पर सेट रहने वाले शांति के सागर बाप की गोद में पलने वाले शांति धाम की यात्रा करने वाले कराने वाले शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी टावर ऑफ पीस शांति स्तंभ के रूप में इस समय में इस धरती पर अवतरित आत्मा के रूप में फरिश्ता के रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया को गति देने वाले आप सभी शांति दूत आत्मा को प्रणाम, ओम शांति और नमस्ते। हम सभी ज्ञान में आने से पहले व प्रारंभ के दिनों में ही हमारा जीवन का लक्ष्य को, जीवन का उद्देश्य को प्राप्त हुआ, हम सबको प्राप्त हुआ ना। उस दिन भी हम लोगों को शिक्षा मिली, वरदान मिला, वह तीसरा नेत्र मिला, वह हमको एक जीवन के लक्ष्य में सबसे पहले हम क्या बनना चाहते हैं, संगम युग में बाप समान बनने के लिए। सतयुग में देवता बनेंगे, परंधाम में निराकारी आत्मा बन करके रहेंगे, परंतु इस धरती पर आने से पहले, हम वापस जाने से पूर्व में हम सभी बाप समान बनेंगे। बाप समान बनने के लिए हम सब पुरुषार्थ करते, सर्वप्रथम श्री बाबा इस धरा पर जब अवतरित होता है उस समय तीन मान वाक्य कहो, तीन अपना स्वरूप को बताया, कौन सा है? कौन सा है? सबसे पहले बाबा ने कहा हम ज्ञान स्वरूपम शिवोहम, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, वह ज्ञान का सागर हम कहते हैं। ज्ञान, ज्ञान अर्थात नॉलेज, हम जिसको कहते हैं नॉलेज इज पावर, क्योंकि परमात्मा के पास कौन सी पावर है, ज्ञान की शक्ति है। अस्त्र शस्त्र की शक्ति नहीं है, बाहुबल की शक्ति नहीं है, धन की शक्ति नहीं है, वह सभी परंधाम से धन नहीं लेके आया और कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लेके आया, परंतु हम सबको खुद भी ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान का शिक्षा दिया। कौन सी शिक्षा? ज्ञान में जहाँ नॉलेज इज पावर हम कहते हैं, नॉलेज इज वे टू एनलाइटनमेंट कहते हैं, नॉलेज लिबरेट्स अस कहते हैं, नॉलेज इज ब्लिस कहते हैं, नॉलेज मनुष्य को दुख से, पाप से, अज्ञान से, भय से, अपवित्रता से, दुख से, इन सब से मुक्त करते हैं। किसी भी दूसरा कोई विधि नहीं है, भले एक डॉक्टर दवाई देते हैं दुख से, बीमारी से मुक्त करते हैं, परंतु फिर भी उसको नॉलेज पुल नहीं कह सकते, कुछ एरिया में, कुछ क्षेत्र में, कुछ बातों में, कुछ कमजोरी को ठीक करने के लिए डॉक्टर को भी हम अपना जीवन में अपनाते। वास्तव में नॉलेज फुल बाबा ने सबसे पहले आकर के हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला, क्योंकि नॉलेज ओपन हमारा तीसरा नेत्र खोला, जिस नेत्र के द्वारा हमको देखने, सोचने, समझने व कर्म करने का एक विधि मिली, जिस विधि के आधार से हम सबको सबसे पहले तो अपने आप का अपना देहाभिमान टूटा, देह के संबंधों का जो बैलेंस करने का हमने सीखा, मैंने ये नहीं कहता हूँ संबंधों को टूटा, परंतु संबंधों को अच्छा बनाने का सीखा, संबंधों को टूटने के लिए नहीं, अच्छे संबंध बनाने के लिए, अच्छे हारमोनी बनाने के लिए, अच्छे मधुर व्यवहार करने के लिए, मधुर बातों से कर्म करने के लिए, हर बातों में बाबा ने नॉलेज देते देते आज के दिन में हम सबको क्या बनाया, नॉलेजफुल बीइंग, नॉलेज बाप समान बनना है तो पहले सबसे पहले नॉलेजफुल बनना, जिस नॉलेज के आधार से हमारा कर्म, हमारा जीवन, हमारा सोच, हमारा संस्कार, हमारा संबंध, हर चीज बनता है। उसी कारण से नॉलेज के आधार से दुनिया में भी कोई भी पोस्ट पावर पोजीशन हासिल करते हैं और डिग्री लेते हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे लॉ हो, चाहे आईटी हो, कोई भी क्षेत्र में, परंतु जिस नॉलेज के कारण उनको हम लोगों ने उस उपाधि देते हैं। और बाबा का जो नॉलेज से हमको क्या उपाधि मिलता है, इस ईश्वरीय शिक्षा के आधार से हमको क्या उपाधि मिलता है, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, देवता बनने की उपाधि मिलते है। देवता हम बनते हैं, हम देवता है। दूसरे किसी भी नॉलेज के आधार से किसी को भी हम देवता नहीं कह सकते दुनिया में, कोई भी डिग्री प्राप्त किया है, परंतु बाबा की नॉलेज के आधार से हम स्वयं आत्मा देव पद प्राप्त करते हैं। उससे पूर्व में हम फरिश्ता पद प्राप्त कर सकते हैं। फरिश्ता जो सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा ऊर्ध्वमुखी में चलने वाले, सदा दूसरों को कल्याण करने वाले, सदा दूसरों को भी हिम्मत दिलाने वाले, सदा दूसरों को एक अपना घर चलने के लिए विधि, श्रेष्ठ कर्म आदि आदि, इसके लिए सबसे पहले हम सभी संगम युग में हम बनते हैं नॉलेजफुल। नॉलेज को दूसरे शब्दों में कहते हैं नॉलेज गिव्स ब्लिस, ज्ञान के आधार से मनुष्य को ब्लिस बाबा ने सेकंड वरदान बाबा ने दिया। वो अपना अस्तित्व को बताया, हम निजानंद स्वरूपम, निजी आनंद कहो, अविनाशी आनंद कहो और सच्चिदानंद कहो, और आनंद में सभी गुण समाया हुआ है, सभी शक्तियां भी समाया हुआ है, सभी गुण भी समाया हुआ है। इसके लिए बाबा ने हमको निजानंद स्वरूप, निजी आनंद कौन सा है, कनरस नहीं है, मनरस नहीं है, शरीर का कोई आकर्षण नहीं है, मन में आनंद रहे, खुशी रहे। जब मन में आनंद होता है, खुशी होता है, तब तो दर्शाता भी है। इसके लिए बाबा का सत्यम शिवम सुंदरम, दूसरी अर्थ में भी हम कहते हैं सत्य भी है, सुंदर भी है, और दुनिया में सुंदरता के लिए बहुत लोगों को प्राइज मिलता है आदि आदि, परंतु बाबा का सत्यम शिवम सुंदरम एटर्नल ट्रूथ है, और उसी कारण से सदा सत्य। हम कुछ समय के लिए सत्य, कभी असत्य, कभी पुण्य, कभी पाप, कभी दुख, कभी सुख आदि आदि चक्कर में आते हैं। बाबा इन चक्कर से मुक्त है, और इसके लिए बाबा को हम कहते हैं सदा ब्लिसफुल। कोई भी परिस्थिति आए, उन परिस्थिति के वश बाबा नहीं होता है, परंतु हम आत्माएं कभी कभी वश हो जाए, परंतु इस समय में संगम युग में हमको कोई भी परिस्थिति में वश नहीं है। परिस्थिति को हमारा वश करना, अपना अधीन कराना, अपना उसमें परिस्थिति के ऊपर राज करना, परिस्थिति के ऊपर प्रभुत्व रखना, इस शक्ति को बाबा देता है। इसके लिए हमको आनंद स्वरूपम कहा जाता है। आनंद कोई भी परिस्थिति अपने आप में ऊपर नहीं कर सके, परंतु क्योंकि हम प्रकृति का मालिक है, चाहे शरीर का भी मालिक है, बाहर का भी, प्रकृति का भी मालिक है बाबा, उसके बाद में उससे भी आगे ले जाकर के बाबा कहते हैं आप विश्व का मालिक बनाता हूं। आप केवल अपने आप को मालिक नहीं, परंतु अपने परिवार का मालिक नहीं, परिसर का मालिक नहीं, परंतु विश्व का मालिक बना दो। इसके लिए बाबा ने कहा आप पूर्वज हो, वो भी याद दिलाया विश्व का मालिक कब थे, उसको पूर्वज के आधार से आप आदि में जब इस सृष्टि पर आए तब तो आप विश्व के मालिक थे, मालिक बनकर के आए थे, और उस सिर्फ मालिक ही नहीं, उसी टाइम से लेकर के आप पूज्य भी थे, क्योंकि बाबा जो ब्लिसफुल है उनको हम पूजा भी करते हैं, क्योंकि एवर प्योर है, एवर एटर्नल प्योर है। इसके लिए बाप समान बनने के लिए अपने समान को जो पहचानते हैं तो ऑटोमेटिकली प्यूरिटी हमारा एक स्वाभाविक धर्म बन जाता है, स्वाभाविक गुण बन जाता है, स्वाभाविक शक्ति बन जाता है, स्वाभाविक सोच बनता है। प्यूरिटी के लिए संघर्ष करना, प्यूरिटी के लिए लड़ाई करना, प्यूरिटी के लिए अनेक आंदोलन करना वो नहीं है, प्योरिटी इज अवर नेचुरल स्टेट ऑफ कॉन्शियस, वो हमारा निजी गुण है। जो निजी गुण है उसको अपनाने में सहज हो सकते, जो अवगुण है वह पराया गुण है, कॉपीड गुण है, वह दूसरों के गुण है। परंतु आजकल दुनिया में भी हम देखते हैं दूसरों को गुणों को देकर के अपना मन खराब करते, दूसरों को बातों को सुन करके अपना मन खराब करते, दूसरों को व्यवहारों को देख करके अपना जीवन की चरित्र को खराब करते, दूसरों को निंदा करके अपनी मान सम्मान को गंवाते। वास्तव में ये सभी, परंतु बाबा ने हम बच्चों को आकर के सबसे पहले अपने स्वमान को जगाया, अपने स्वधर्म को जगाया, अपना स्वदेश को जगाया, स्वदेश की यात्रा करने को सिखाया। और इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को अनेक बातें शिक्षा दिया है। यदि हम इसको सदा नॉलेजफुल के आधार से वो स्मृति रहता है तो कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी विघ्न, कोई भी बात है हमारा सामने अपने मन के अंदर टिक नहीं सकता है, रह नहीं सकता है, क्योंकि मन एक रिवर के रूप में, एक नदी के रूप में, एक सागर के रूप में, बाबा ज्ञान का सागर कहते तो सागर में हम समा जाते हैं। मन अस्तित्व को गंवाते नहीं है, परंतु उसका फीलिंग, उसका एक्सप्रेशन, उसका सोच ऑटोमेटिकली माइंड में रहता है। इसके लिए आत्मा कभी दुख नहीं हो सकता, अशांति आ ही नहीं सकते, भय तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको त्रिकालदर्शी बन जाता है, त्रिनेत्री भी बन जाता है, तब तो अभिमान और अपमान का चक्कर से मुक्त हो जाता है। कोई भी अभिमान भी नहीं, अपमान भी नहीं, उसका चक्कर भी नहीं। ऐसी भले स्वदर्शन चक्रधारी है, विश्व दर्शन करने वाले हैं, विश्व को अपने दर्शन देने वाले हैं। इसके लिए बाबा ने कहा ब्लेसिंग देने वाले, ब्लेसिंग लेने वाले। जो ब्लिसफुल है वो सदा क्या करेगा, ब्लेसिंग खुद बाबा से लेता है और दूसरों को भी देते हैं, ब्लिसफुल लाइफ बन जाते। ऐसे ब्लिसफुल लाइफ लीड करने वाले कौन रहेगा, वो जो फरिश्ता ही बनेगा, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को इस समय में फरिश्तों के रूप में देखता है, फरिश्ता बनाने के लिए आया है, फरिश्ता बन करके दिखाता है। हम सभी अपनी वरदान की यात्रा करेंगे। बाबा हर दिन हम बच्चों को वरदान देता है, ब्लेसिंग देता है, और साथ साथ में बच्चों को मॉनिटर भी करता है, शिक्षा देता है, तो शिक्षा के अनुरूप हमारा जीवन परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी देखता है। हम सबका जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण धारण किया व नहीं किया वो भी बाबा शिक्षा के रूप में देते हैं। इसके लिए हम सभी ने ये लक्ष्य रखा है, इस संगम युग में हम सदा निराकार स्थिति में स्थित होने, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने से पूर्व में तीन शब्दों के माध्यम द्वारा वरदान दिया था। वो तीन शब्द सबको याद है, किस किस को याद है, याद करा करे, बहुत लोगों को याद है, कुछ लोगों को याद नहीं। वो कौन सी तीन शब्द है, बहुत अच्छी बात है, आप सभी पास भी ताना रहने वाले। निराकार, जब भी हम साकार को देखते हैं, व्यक्त को देखते हैं, व्यक्त का भाव को भी देखते हैं, व्यक्त की दुनिया को देखते हैं, व्यक्त के आधार से रचा हुआ संस्कृति को देखते हैं और उसको परंपरा को देखते हैं, फिर भी इन सब को भूल करके हम सब निराकार स्थिति में स्थित होना, क्योंकि ये साकारी दुनिया में होते हुए भी, शरीर में होते हुए, शरीर के अनेक प्रकार की प्रक्रिया में गुजरते हुए भी, फिर भी हमको निरंतर सदा याद रहे हम निराकार। जब सिर्फ निराकारी भी नहीं है, उसके साथ साथ बाबा ने क्या कहा, निरहंकारी, जो कर्म क्षेत्र में कर्म करना है, संबंध में आना, व्यवहार में आना, इस दुनिया को परिवर्तन करना, अनेक कार्य को करना, ईश्वरीय कार्य करना, विशेष करके इस जल में, इस कार्य करते हुए बहुत सफलता भी मिलती है, कभी चैलेंजेस भी मिलती है, परंतु कभी कभी फेल्यूर नहीं लगता है, दैट इज अ स्टेपिंग स्टोन पर सक्सेस हो सकता है। परंतु उस समय में भी हमको निरहंकारी बन करके रहना, क्योंकि कोई भी कार्य में हम सफल मिलता है तो बाबा के कारण मिलता है, बाबा की शक्ति के कारण मिलता है, बाबा के वरदानों के कारण मिलता है, बाबा की योजना के अनुसार हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए निमित्त बनाता है, इसके लिए वो सक्सेस मिलता है। हमको क्या बनाना बाबा आया है? विश्व का मालिक बनाने के लिए, देवता विश्व के मालिक बनाने के लिए। इसके लिए अभिमान और अपमान ये दोनों नहीं होना चाहिए। इसके लिए निरहंकारी बन करके, हर कर्म जो है निरहंकारी बन करके, निराकारी बन करके। और साथ साथ में दूसरे एक शब्द बाबा ने कहा था, कौन सा? कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, कोई इच्छा मात्रम अविद्या बनना चाहिए, कोई भी प्रकार की सूक्ष्म रीति से व अव्यक्त रूप में व गुप्त रीति से भी कोई भी विकार हमको सताता है, तब तो वो पूर्ण योगी नहीं बन सकता है, ए ब्लिसफुल लाइफ नहीं हो सकता है। उसका मस्तिष्क ज्ञान स्थल नहीं बन सकता है, मस्तिष्क युद्ध स्थल हो जाता है। क्योंकि जहां व्यर्थ संकल्प आता है तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो जाता है, एनर्जी वेस्ट हो जाता है, खुशी वेस्ट हो जाता है, संबंधों में मधुरता नहीं आती है और एक रस अवस्था नहीं होता है, और बाबा का याद भी उस समय में नहीं आता होता है, नहीं होता है। इसके लिए व्यर्थ संकल्प का कारण ही है कोई न कोई हम लोगों के अंदर सूक्ष्म संस्कार में विकार है, वह कमजोरी है, वह अज्ञानता है, वह अपवित्रता है। इनके कारण मनुष्य को आज के दिन में हम दुनिया में देखते हैं एक ईर्ष्या और द्वेष और नफरत, काम दिखता है इसके लिए उससे मुक्त है, क्रोध भी दिखता है उससे भी कंट्रोल है, और साथ साथ में मोह तो अधिकांश जीता है परंतु फिर भी कहीं ना कहीं दिखता है। इसके इससे भी बाल बच्चे जो है ईर्ष्या करना, द्वेष करना, नफरत करना किसी के गुणों व गुणों के कारण, वह देखते हुए भी उनको अपने मन में उचित रखते हैं तब तो ईर्ष्या करते। स्पेशली हम ब्राह्मण दुनिया में तो वो तो पूर्ण लोगों में संस्कार बने हैं और उसका सोच बना है, उसके कारण युद्ध है, इसके कारण भय है, इसके कारण अविश्वास है, सब अनेक प्रकार के अविश्वास है मनुष्य को। अपने आप में विश्वास नहीं, अपने परिवार में विश्वास नहीं, अपने समाज में विश्वास नहीं, अपनी सत्ता में रहने वाले उनके साथ विश्वास नहीं, और दूसरों का भी विश्वास नहीं। अविश्वास का मूल कारण ही यही है। इसके लिए इन कारण हम लोगों को नहीं होना चाहिए, और यदि होता है तो हमारा जीवन में कोई न कोई कमजोर, वह बाबा कहते हैं नंबर वन बनने की बजाय नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कहते हैं याद प्यार। इसके लिए नंबर वन बनना हो तो हम इन बातों को पर अटेंशन रख करके इन बातों से मुक्त हो जाएंगे, तब तो आपका एकाग्रता भी बढ़ेगा, एक अवस्था भी बढ़ेगा, सदा बाबा का स्मृति स्वरूप ऑटोमेटिकली रहेगा। हमको योग अभ्यास करने के लिए समय नहीं है, हर समय में योग रहेगा, हर बातों में योग रहेगा, क्योंकि हम सभी ने एक स्लोगन नहीं एक अनुभव का जीवन में कहता, बाबा किसके साथ है? मेरा साथ है, हर एक का साथ है। संगम युग में किसी को भी ब्राह्मणों को पूछे तो भगवान किधर है, हम क्या कहेंगे? मेरा साथ है, मेरे साथ ही है भगवान। बाबा हमारा साथ तब रहता है जहां पवित्रता है, जहां बाबा की मर्यादा है, बाबा की श्रीमत है, बाबा का अनुच जीवन में आचरण करने वाले, तब उनको बाबा साथ देता है, उनको वरदान देता है, उसको हिम्मत देता है, उनको सकाश देता है। उनको किधर भी है, किसी परिस्थिति में है, किसी के संग में है, फिर भी उस संग से भी बचा करके, उस परिस्थिति से बचा करके हम सबको विजयी आत्मा बनाते हैं। विजयी आत्मा हर बात में, सिर्फ एक बरस में एक बार परीक्षा दे दिया पास हो गया वो नहीं है, जीवन की हर घड़ी में विजयी आत्मा बनना, विजयी रतन बनना। इसके लिए बाबा ने, ब्रह्म बाबा ने हर घड़ी बाबा को अपना साथी बनाया, शिव बाबा का साथी बनाया, और ब्राह्मणों को बाबा ने स्नेह दिया, सहयोग दिया, ज्ञान दिया, और हर प्रकार का त्याग और तपस्या सिखाया। उसका फल स्वरूप आज हम बाबा को किस नजर से देखते हैं, बाबा को किस नजर से देखते हैं? अपने साथी ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त होने के बाद में इतनी ब्राह्मणों को रचा रहा, अपने एक एक संकल्पों से बाबा ने इस दुनिया के कोने कोने से हम को ढूंढा और अपना बनाया, अपना बना करके अपना स्वराज अधिकारी बनाया, अनेक बंधनों से मुक्त कर दिया। इस समय में बाबा जीवन से भी मुक्त करके, बंधनों से मुक्त करके, इस दुनिया से मुक्त करके अब कहाँ जाना है? अब घर जाना है, ये बातें स्वीकार है। दीदी मनमोहिनी जी, सदैव दीदी के अंदर ये स्लोगन था, अब घर जाना। हमको ये स्मृति रहता है तो ऑटोमेटिकली अभिमान और अपमान व निंदा और स्तुति, सफलता और विफलता, इन सभी बातों से सम्मान रहेगा, संतुष्ट रहेगा। इसके लिए संगम युग में सबसे अधिक गुण जो है संतुष्टता। संतुष्टता दर्शाता है, ज्ञान का भी दर्शाता है, गुणों का भी दर्शाता है, शक्तियों का भी दर्शाता है, प्राप्तियों को दर्शाता है। सदा ब्लिसफुल जीवन जीने की कला ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसके लिए संतुष्ट, संगम युग में संतुष्ट नहीं रहेगा तो और कब बनेगा? संगम युग में हमको ईश्वरीय संतान मिला। पहले सतयुग में देव कुल की संतान है, परंतु ईश्वरीय संतान संगम युग में, बाबा हमारा साथ है। साथ साथ में केवल शिव बाबा ही नहीं, ब्रह्मा बाबा भी हमारा साथ है। और साथ साथ में हम सबको बाबा कहते हैं, पूर्वज है। पूर्वज कितने पूर्वज हैं? हम आदि से आने वाले, सतयुग से सूर्यवंशी देवता कुल में आने वाले, तब तो हमारा साथ पूर्वज आत्मा है। संगम युग के पूर्वज, संगम युग के पूर्वज भी कौन है? चाहे मम्मा हो, चाहे दादी प्रकाशमणि हो, दादी जानकी जी हो, हृदय मोहिनी दादी हो, हृदय पुष्पा दादी भी थे, कर्नाटक में साउथ का इंचार्ज थे। बहुत लोगों को जिस शायद मालूम है, ना मालूम हो, हमारा गुरु माता कहो, होली मदर, मेरे लिए विशेष वो दादी है। इसके लिए ऐसी बहुत दादियां, हमारा पूर्वज दादियां इस समय में सभी एडवांस पार्टी में है, और अभी वो भी आह्वान कर रहा है, वो भी हमको इंतजार कर रहा है, वो भी हम सबको भुलावा कर रहा है। इसके लिए इस समय में हमको बाबा के साथ साथ हमारा इस कुल के, इस वंशज के, इस दुनिया को मालिक बनने वाले, बनाने वाले जो आत्मा है, उन सब भी विशेष करके इधर आते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में, और सामने देखो सब दादियों का फोटो है। और हमें किधर भी इतनी फोटो इंस्टीट्यूशन में नहीं लगाया, चाहे शांतिवन में भी नहीं, पांडवन में भी नहीं, और केवल ज्ञान सरोवर में सबका चेहरा दिखाई देते हैं। चाहे दादा है, चाहे जगदीश जी है, चंद्रास दादा है, ईश्वर किशोर दादा है, आनंद किशोर दादा है, ऐसे बहुत दादा भी दिखता है। इसके लिए वो पूर्वज बाबा, उनके साथ साथ हम लोगों को भी पूर्वज कहा है, तो हम उसके वंशज हैं, उनके कुल वारिसदार है, और उस दुनिया में आने वाले हम सब हैं। इसके लिए यदि हमको पूर्वज की बात याद आता है तो ऑटोमेटिकली उसका स्वरूप, उनका गुण, उनका कर्तव्य, उनकी सेवा ऑटोमेटिकली स्मृति में आता है। जब वो स्मृति में आता है तो कर्मों में ऑटोमेटिकली आता है। जो स्मृति में नहीं आता है वो कर्म में नहीं आता है। कर्म में नहीं आता है, इसका मतलब उनको त्याग कठिन लगता है, तपस्या कठिन लगता है, ये जीवन कठिन लगता है। अदरवाइज ये त्याग करना उनके लिए पाई पैसे की बात है, क्योंकि जो भी इस दुनिया में हम त्याग करते हैं, क्या त्याग करते हैं? नेगेटिविटी को त्याग करते हैं, विनाश चीजों को त्याग करते हैं, देहाभिमान को त्याग करते हैं। दुनिया की इवन दौलत भी हो, थोड़े बहुत कोई पोस्ट है, पावर है, परंतु सत्य के हिसाब से देखा जाए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, उसका वो भी त्याग कर सकता है। धन भी कौन सी है? विनाशी धन है, मट्टी में मिलने वाला है। दुनिया की हर चीज इस दुनिया में जो आंखों में देखते हैं वो दुनिया, ये सब विनाश होने वाले, विनाश हुआ ही पड़ा है। विनाश होने वाला तो है, परंतु हमारे हिसाब से अपने के लिए तो विनाश हुआ है। विनाशी चीजों को कोई टच नहीं करता है, कोई देखता नहीं, उसके ऊपर लालच नहीं है, उसके ऊपर इच्छा नहीं। ऐसी स्थिति हम बनाएंगे, ऑटोमेटिकली हम फरिश्ता बन सकते हैं इसी जीवन। यदि उसके बाद उसके विरुद्ध में कोई भी हम संकल्प करते हैं, संस्कार को धारण करते हैं और विचार करते हैं, तब तो उनके अंदर विविधता हो सकती है और मन में युद्ध हो सकता है, मन एकाग्र नहीं हो सकता है, मन पर चिंतन हो सकता है, मन इच्छा मात्र अविद्या नहीं बन सकते, इच्छा मात्र अविद्या नहीं बन सकते। इसके लिए और उसको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत कठिनाई को पास करना होता है, तब तो संघर्ष करना पड़ता है। हमारा मस्तिष्क को युद्ध स्थल बना देते हैं। जब संघर्ष करना अर्थात मस्तिष्क में युद्ध स्थल, जहाँ युद्ध होता है वहाँ अनेक प्रकार की कमजोरी आते हैं, नेगेटिविटी आता है और दूसरों का अवगुण भी आता है और धोखाधड़ी करते हैं और झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं आदि आदि आदि। युद्ध केवल मैदान में एक दो को व्यक्तिगत युद्ध करना अलग चीज है, परंतु जो मन में इस प्रकार के संस्कार है, स्वभाव है, सोच है, वो भी अपने को युद्ध बाहर चलता है, दुनिया में चलता है, दूसरे स्थानों पर चलता है, परंतु हम उसका संस्कार अपने मन में अपना लेते हैं। ये बाप का संस्कार नहीं है, देवताओं का संस्कार नहीं है, फरिश्तों का संस्कार नहीं, उस संस्कार को जब अपनाते हैं तब तो उनको कहीं न कहीं प्रकार की समस्या से गुजरते हैं और उनको अच्छा नींद नहीं आता है। जब चाहे तब नींद कर सकता है, जब चाहे तब हम जागृत हो सकता है, मन सदा अवेकन स्टेट ऑफ कॉन्शियस नहीं रहते, थोड़ा बहुत उनको युद्ध स्तर होता है। इसके लिए बाबा ने इस समय में बच्चों को पुरुषार्थी कहते हैं ना, वो नहीं, सदा विजयी बनो। पुरुषार्थ एक केवल निमित्त के लिए, इसके लिए ऐसी स्थिति बनाना है इन इन छोटे मोटे संस्कारों से मुक्त हो जाए, तब तो बाबा समान बन सकते, बाप समान बन सकते। क्योंकि अभी भी दुनिया में भगत लोग किसके पास जाते हैं, एक तो बाबा के पास जाते हैं मंदिरों में भी, दूसरा देवियों के पास जाते हैं व देवताओं के पास जाते हैं। कोई भी अपना संकल्पों को सिद्ध करना, अपना कार्य को सिद्ध करना, अपने रास्ते को साफ करना, अपना जीवन को वृद्धि और समृद्धि की तरफ ले जाना, उसके लिए किससे वरदान मांगते हैं, किससे वरदान मांगते हैं, है? देवताओं के। और वो देवी देवता किधर है अभी, है? सामने है, हम सभी हैं, वही आत्मा है, हम पुनः जागृत हुए हैं। इसके लिए इस समय में हमारा एक ही काम है, एक ही कर्तव्य है, ब्लेसिंग दो, जो देता है तो उनके पास ऑटोमेटिकली मिल जाता है, जो देने वालों को कभी हाथ खाली नहीं हो सकते, देने वालों का हाथ सदा भरपूर होता है। इसके लिए दाता, देवता अर्थात दाता, इसके लिए संगम में भी हर ब्राह्मण आत्मा है, कुछ न कुछ देने के लिए संकल्प करना, इसके लिए मन से इस समय में विशेष सेवा करना। सबसे सेवा करने के लिए मन में संकल्प आता है तब तो देवता बनता है, मन में संकल्प आता है तब दान करता है, मन में संकल्प आता है तब पुण्य का काम करता है, मन में संकल्प आता है तब सहयोग देता है, मन में संकल्प आता है तब तो दया आती है व स्नेह आता है। उसके लिए संकल्प एक हमको सिद्धि की तरफ ले जाता है, इसके लिए संकल्प वेस्ट नहीं हो सकता है, संकल्प एक सिद्धि की तरफ। इसके लिए बाबा ने कहा संकल्प सिद्धि, जितने हम संकल्पों में सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके पुरुषार्थ में तीव्रता आई जाता है और सदा निश्चिंत जीवन, निश्चिंत, किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार की आलोचना की वश नहीं होगा, परंतु आत्मा सदा प्रसन्न चित बाबा का बाहों में, बाबा का गोद में। हमको हर एक को बाबा हम क्या कहते हैं, हम ईश्वरीय गोद में पालने वाले, मनुष्य की गोद में नहीं, प्रकृति की गोद में नहीं, दुनिया की गोद में नहीं, हम ईश्वरीय गोद में पालने वाले। ईश्वरीय गोद सबसे बड़ा श्रेष्ठ स्थल है, सबसे बड़ा भाग्य स्थल है, सबसे बड़ा प्राप्ति के स्थल है, सबसे बड़ा सेफ स्थल है। दुनिया का कोई भी ऐसी स्थान नहीं है, ऐसी जगह नहीं है, ऐसी परिवार नहीं है, ऐसे राज्य नहीं है जहां आज की दुनिया में युद्ध नहीं चलता हो, अशांति ना हो, भाई ना हो। इसके लिए इन सबसे मुक्त, इन सबसे अलग होकर के जीवन जीने का कला सीखना है तो किसके पास सीखेंगे, हम ब्राह्मणों के पास सीखेंगे और इन देवी देवताओं के पास सीखेंगे। इसके लिए देवी देवताओं को अभी मंदिर में नहीं है, अभी चलते फुरते और तो बात करने वाले, देखने वाले, ब्लेसिंग देने वाले, दान पुण्य को करने वाले अर्थात वरदान देने वाले हम सब आत्मा है। अभी बाबा अकेला जब शुरुआत किया उस समय में बहुत विरोध किया, समाज भी विरोध किया, परिवार भी विरोध किया, अनेक लोगों ने सरकार भी विरोध किया, आंदोलन हुए, परंतु अकेला चल पड़ा, परंतु उसका एक ही निश्चय बुद्धि बाबा ने इतने परिवार को रचा। हम इतने लाखों भाई बहने हैं, इतने लाखों भाई बहने, भाई बहने, हम इतने मिलकर के एक बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं, किस किस को कर सकते हैं, हिम्मत है, विश्वास है, हाथ के रख रहे हैं। वाह वाह, धन्यवाद आप सबको भी, बधाई। क्योंकि हम सब मिलकर एक बाबा ने हम बच्चों को ढूंढा, एक बाबा ने हम बच्चों को इस विधि से चलाया। अभी तक हम लोग बाबा को प्रत्यक्ष नहीं किया, केवल अपने मन में प्रत्यक्ष है, परंतु मन में भी कभी कभी हम भूल जाते हैं। कभी कभी बाबा को भूलते वो हाथ खड़ा करें, सच्ची दिल से बात है। कभी कभी हम बाबा को भूल जाते हैं और दूसरी बातें याद करते हैं। बाबा को याद करना पड़ता है। लोगों कहते हैं हमको योग करना है, बाबा को याद करने के लिए जा रहे हैं। हमारे याद सदा रहना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज तो सदा याद रहना चाहिए, बुरी चीज सदा के लिए मुक्त होना चाहिए। परंतु इस समय में भी हम लोग वही पुरुषार्थ करते रहे, बचपन का पुरुषार्थ सदा याद की स्वरूप रहे, तब तो ऑटोमेटिकली हम चलते फिरते भी योगी है और सोते हुए भी योगी है। सोना अर्थात हम देहाभिमानी बन करके ने एक आत्मा निश्चिंत स्थिति में, विश्राम स्थिति में और निसंकल्प स्थिति में बाबा के गोद में सोए हुए ऐसा अनुभव कर। मुझे दो तीन घटना आपके सामने बताना चाहता हूँ। मुझे ये सौभाग्य था, दादी प्रकाश मणि जी के साथ बहुत स्थानों में यात्रा कर रहे थे। एक बार दादी ने हम लोग दादी को जयपुर में जो उस समय के गवर्नर थे डॉक्टर चन्ना रेड्डी, उनको बुलाए थे उन कार्यक्रम में। हम लोग इधर से आश्रम एक्सप्रेस उस दिन किसी भी कारण से ट्रेन लेट हुआ था, 11 बजे सोए और दादी 11:30 बजे लगभग बिस्तर, हम एक ही कूपे में थे उस समय सोए। दादी ने 4 बजे से पहले उठ करके अपने स्थान पर योग कर रहे थे, हम लोग फिर भी ऊपर बर्थ में बैठे सोए थे। हमने बोला दादी इतना लेट आप सोए, आप इतने जल्दी, अभी तो 1 घंटा 1 घंटा लगेगा, ऐसा मैंने कहा दादी को। परंतु दादी ने कहा इस समय में हमारा नाम लेकर के लोग जागृत है, हमारा नाम लेकर के लोग खुशी से याद कर रहे, अभी दादी आ रहे, दादी आ रहे, दादी आ रहे। हमारे भगत लोग व अपने परिवार के लोग, अपने संबंध के लोग, अपने राज्य में आने वाले लोग खुशी होकर के खुशी से नाच रहे, हम उस समय में सोते रहेंगे तो हम उनको कुछ वरदान नहीं दे सकते। इसके लिए दादी बैठ करके उस समय सकाश दे रहे, मैं जाने से पहले, उससे मिलने से पहले, उनसे फूल रिसीव करने से पहले, उनकी दृष्टि देने से पहले मैं यहां से दृष्टि देता हूं, दृष्टि देती हूं, ऐसा उनके अनुभव उनके जीवन में मुझे सुनने को मिला। इसके लिए आपने देखा होगा दादी सदा प्रसन्न चित रहती थी और उस समय भी उसका वाइब्रेशन दूसरों को पहुंचा। इसके लिए हमको वाइब्रेशन से सेवा करना है तो अपनी कुछ ऐसी निजी संस्कार बनाए, निजी धारण बनाए, तब तो लोगों को। और दूसरी बातें मैंने दादी के जीवन में देखा, अंतिम तक मैंने देखा कम से कम 4 बार रोज मुरली पढ़ती थी दादी। 1 टाइम नंबर 1 अमृत वेले उठ करके योग करने के बाद में कमरे में जाती थी, कमरे में जाते हुए तो उसको चाय वगैरह रखते थे बहने, और उस समय उसके हाथ में मुरली होता था, मुरली पढ़ करके क्लास में आती थी। और जब क्लास में आती तो दादी ऐसा था उसका दृष्टि मिलते ही जैसे सर्च लाइट मिल रहा है, चाहे शक्ति का मिल रहा है, कुछ वरदान को मिल रहा है, और ऐसे बाप दादा आए हुए ऐसा लगता था, ऐसा अनुभव होता था, क्योंकि उस टाइम में खुद दादी मुरली पढ़। तीसरी टाइम हम लोग शाम के टाइम में 4:30 बजे दादी अपने ऑफिस में पांडवर में आते थे और उधर आकर के दादी बैठती थी, यीशु दादी, दादी का ऑफिस है, उधर भी लोग कुछ चाय वगैरह रखते थे। उससे पहले दादी के हाथ में मुरली होता था उस समय में, और उस समय तीसरी बार मुरली, हम लोग किसी के कारण से उसमें, उस समय दादी अकेले रहती थी, मिलने के लिए, शेयर करने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ दादी से पूछने के लिए हम लोग जाते थे, सबसे पहले दादी मुरली क्वेश्चन एंड आंसर करती थी। इसके लिए तीसरी बार दादी मुरली, चौथी बार दादी सोने से पहले मुरली लेकर के 5 मिनट 10 मिनट सोती थी और पढ़ करके बाद में सोती थी। हमने भी एक कई बार दादी को देखा, पूछा दादी आप तो ब्रह्मा बाबा के साथ मुरली पढ़े, रोज मुरली सुबह पढ़ते हैं, आपका कई बार पढ़ते हैं, अभी तो लेट हो गया था। दादी कहते हैं नहीं, मैं मुरली पढ़ के सोती तो ऐसा लगता है मैं बिस्तरे पर नहीं सोई, बाबा की गोद में सोई, बाबा की बिस्तरे पर नहीं, बाबा की गोद में सोई, उनका रात का समय ऐसी बाबा की गोद में एक बच्चे की तरह, एक खुशी की, आनंद की उसके चेहरे पर इतना खुशी हुआ। इसके लिए ऐसे पुरुषार्थ कितने भाई बहने हम करते हैं, कौन हाथ खड़ा करे, 3-4-5 लोग हैं। ऐसे पुरुषार्थ जो करेंगे तो ऑटोमेटिकली सूर्य वंश में आएंगे, नंबर 1 होगा, नंबर 1 एक अर्थात नंबर 1 राज्य अधिकारी बनेंगे। इसके लिए ऐसे पुरुषार्थ करने वाले बच्चे ही बाप समान बन सकते हैं, ऐसे पुरुषार्थ करने वाले बच्चे ही मातेश्वरी जैसे जगदम्बा सरस्वती बन सकते हैं, ऐसे बच्चे जो पुरुषार्थ करने वाले दादी प्रकाशमणि जैसे बन सकते हैं, ऐसे पुरुषार्थ करने वाले। मैंने देखा जगदीश जी को अब किसी भी टाइम में कोई भी बात को टॉपिक दे दो भाषण करने के लिए, इतनी निरर्गण निश्चिंत होकर के, मैंने कई बार उसको बहुत बड़े बड़े सभा में देखा, चाहे हिंदुस्तान में देखा, विदेश में देखा, साइंटिफिक फोरम में देखा, पॉलिटिकल फोरम में देखा, व संतों की समागम में देखा, इतना उनके एक एक महावाक्य इतना लोगों को दिल टच करता था और उनके अंदर एक जागृति पैदा करते थे, क्योंकि उनको मैंने उसका बहुत समय सुबह से शाम तक वो बिजी रहते थे, और उसको कभी सोने के लिए कहो 10-15 मिनट सो करके उठते थे ऐसे फ्रेश हो जाते। उनको सोना माना नींद करना नहीं, रिलैक्स करना, माइंड को थोड़ा स्टॉप करना, माइंड को थोड़ा विश्राम देना, ऐसी स्थिति उनके अनुभव मैंने अपने जीवन में देखा। इसके लिए मेरे कहने के भाव यह है वो ऑटोमेटिकली बाप समान बन सकता है, बाप समान निरंतर सेवादारी, केवल कुछ समय के लिए सेवादारी, कुछ घंटे के लिए सेवादारी, कुछ दिनों की सेवादारी, कुछ प्लान्ड सेवादारी, कुछ समय किसी ने सेवा दिया तो उस समय में हम सेवा करना, नहीं तो अन्य समय वेस्ट करना, ऐसा नहीं है। सेवादारी माना निरंतर सेवा, बाबा जैसे 24 घंटे 365 डेज पूरा संगम युग में बच्चों के साथ सेवा करता है, ऐसी हम देवता बनने वाले सूर्यवंशी कुल में आने वाले उसकी सेवा भी ऐसी होना चाहिए, और उनके अंदर जागृत अवस्था भी ऐसी होना चाहिए, और ऐसी स्थिति जो बनाता है ऑटोमेटिकली संगम युग में कोई भी विघ्न उनके सामने टिक नहीं सकते। विघ्न आ सकता है ये नहीं, क्योंकि ये दुनिया बदलने वाली दुनिया है और इस दुनिया में कोई भी प्रकार की समस्या आ सकता है, परंतु समस्या उनको तोपा दे करके जाता है, माला डाल के जाता है, शक्ति दे करके जाता है, हिम्मत दिला के जाता है, हिम्मत को जगा के जाता है। इसके लिए कभी उनको जीवन में निराश और उदास नहीं हो सकता। ब्राह्मण बच्चे कभी निराश और उदास होता है इसका मतलब ये है उनको कहीं ना कहीं हम श्रीमत को उल्लंघन, कहीं ना कहीं उनको अपने पहचान अपने को भी मालूम है, वह कहीं ना कहीं दूसरों के अवगुणों को देखना और मन के चित्त में लाना और उसको शेयर करना दूसरों के साथ, ये कहीं ना कहीं एक कमजोरी रहता है, तब तो उनके अंदर ये प्रश्न उठता है। इसके लिए कभी भी निराश और उदास ब्राह्मणों के जीवन में नहीं, सहा सदा उत्साह, सदा उमंग, सदा खुशी, सदा आनंद, सदा निश्चिंत रहना, यही बाप समान बनने की विधि है। कभी किसी भी परिस्थिति दुनिया की भले वातावरण बहुत नेगेटिव है, मैंने देखा 2020 इतने इस देश में, इस विश्व में, इस मानव कुल में इतने बड़े आघात के रूप में, युद्ध के रूप में, वायुमंडल के रूप में कोरोना बीमारी थे। मैंने अधिकांश देखा ब्राह्मण परिवार विशेष सेवा किया इस समय। मन की सेवा करने के लिए बाबा ने बहुत बार कहता था आपको मन की सेवा करो, अभी तो लास्ट ईयर हम सभी किस प्रकार की सेवा किया, मन की सेवा किया, अधिक तपस्या किया और अधिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम द्वारा सेवा किया, और इसके कारण से बाबा ने कहते मैं घर घर को स्वर्ग बनाता हूं। स्वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले मूल क्या कर्तव्य होना चाहिए, घर घर में मुरली पढ़ना चाहिए, घर घर में मुरली के मंथन होना चाहिए, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, चाहे सेंटर में रहने वाले चाहे घर में रहने वाले, परंतु वहां किसी न किसी रूप में मुरली का मंथन होता, मुरली का अध्ययन होता, मुरली का सोच होता, मुरली की क्लासेस होते, अनेक प्रकार के मीडिया के माध्यम द्वारा सेवा हुई और कोई भी वेस्ट टाइम नहीं किया। कोविड की पीरियड में किसी ने वेस्ट टाइम किया, कौन कौन किया, वो कोई भी हाथ नहीं खड़ा किया, अच्छी बात। इसके लिए कोविड बीमारी लोगों के बहुत हताश उदास और बीमारी इतना बढ़ा दिया, परंतु लोगों के जीवन बहुत दुखमय गया, परंतु हम ब्राह्मणों के जीवन में ऐसी परिस्थिति में भी खुशी रहा। हमको ये याद आया बाबा का समय, जो बाबा ने कहा हुआ वो समय समीप आ गया, बिना सामने खड़ा है। बाबा की हर मुरली जो साकार बाबा की मुरली अव्यक्त होने से पूर्व में बाबा ने करीब 50 साल पहले जो बाबा का मुरली सुनाया था, एक दिन आएगा जिस दिन आप तो घर से बाहर नहीं जा सकते, परंतु वो वातावरण देखा, वो सिचुएशन देखा, वो वायुमंडल देखा। इसके लिए ऐसी वायुमंडल भी अपने आप को भी सेफ्टी और संसार के लिए सकाश देने का भी कार्य किया। बाबा ने यही कहा था, ऐसी समय भी आएगा कोई भी शव संस्कार करने के लिए भी नहीं मिलेगा। अपने मित्र, अपने संबंधी, अपने भाई बहन, अपने लौकिक वालों को किसी का भी COVID-19 से बीमारी से मरा तो उसका संस्कार करने में भी दूर रहे, ऐसी परिस्थिति है। क्यों? ऐसी वातावरण तो बाबा ने पहले ही कहा था, परंतु जो आत्मा ज्ञान स्वरूप में थे उनको अपने सावधान भी रखा, वो परिस्थिति का साक्षी होकर के देखा, परंतु अपने मन को खराब नहीं किया, और भी मन को बाबा की शिक्षा को याद करते हुए और भी अधिक अच्छे पुरुषार्थ किया। कई हो सकता कुछ लोग नहीं किया, अधिक पुरुषार्थ किया, साथ साथ में उनके सर्वस्व त्याग भी करके उन्होंने सफलता भी किया। अपने जीवन में सफल करो, बाबा ने कहा कई बार, सफल करो, सफलता का अनुभव करो। उनको जो भी सफल करने के टाइम था वो सफल किया। इसके लिए संगम युग में हमको सफल करने का भी समय और सफलता का अनुभव करने का भी समय। इसके लिए बाबा जैसे सिद्धि स्वरूप अनुभव किया ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने, हमको भी सिद्धि स्वरूप का अनुभव करना ही तपस्या। मुझे और एक बात याद आ रहा है, एक बार दादी के पास एक बहने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग की नक्शा लेकर के आए, दादी को बताया, दादी आपको इसको आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग देना, हमारा सेंटर के भाई बहने मिल करके एक बड़ा सेंटर बनाने के संकल्प किया है। दादी ने देखा, सारा चिर से पलट करके सारी नक्शा देखा, देख करके उसको भी देखा, उसको देख करके 2 मिनट दादी ने इसको दृष्टि दिया, देख करके दादी ने कहा, इसको देख करके आपको चिंता होती है इस बिल्डिंग बनाने के लिए, पैसे कहाँ से आएगा, कैसे होगा, ये नेचुरल स्वभाव है, इतना बड़ा योजना बनाएंगे तो चिंता तो होती है। दादी ने कहा, आप देवी बन जाओ, आपका बिल्डिंग बन जाएगा। माना देवी अपना देवताओं का मूर्ति, अपने अपना मंदिर आप बनाएंगे, अपना मंदिर आप नहीं बनाएंगे, आपका मंदिर दूसरे लोग बनाएंगे, इसके लिए आपका सेंटर भी दूसरे बना देंगे, वो बाबा का सेंटर है, आप निश्चिंत होकर के अपना स्वधर्म को देवता स्वधर्म बना दो, शांति के स्वधर्म बना दो, शक्ति का स्वधर्म बना दो, दान करने के स्वधर्म बनाओ, आप देवता देवता बन जाओ, और ऑटोमेटिकली भवन। 1 साल के बाद में वो आकर के दादी से उद्घाटन भी कराए। माना मन की शक्ति, संकल्प की शक्ति और अपने गुणों की शक्ति, आप समान बनने की शक्ति है, आपको स्थूल की भी साधना में भी आगे वृद्धि होगी, समृद्धि होगी, सफलता होगी, साथ साथ में उनको निश्चिंत भी बना देते। हमको इतना बड़ा कार्य हम कैसे करेंगे वो चिंता नहीं, परंतु आप जितने बड़े व्यक्तित्व जीवन बनाने की विधि सीखेंगे, अपने जीवन को व्यक्तित्व को बड़ा बनाएंगे और हर चीज आपको ऑटोमेटिकली सफल है। व्यक्ति का जीवन बनाने के बजाय हम साधनों को बनाने के चक्कर में जाकर के बहुत संघर्ष करता है, वो संघर्ष अपने जीवन को समय व्यतीत करना, समय नष्ट कर देते हैं। इसके लिए व्यक्तित्व का जीवन बड़ा करना ही हमारे संगम युग में लक्ष्य है। बाबा ने इस संगम युग में आकर के अपने जीवन को इतने ऊंच बनाया, ब्रह्मा बाबा हमारा दादी इतने ऊंच बनाया, ऊंची उसकी मानव स्थिति इतने ऊंच बनाया, उसके कारण उनकी सारी दुनिया उसको नष्ट मस्तक करके नमन करते। आज भी देखो बाबा को नमन करते हैं, दादियों को नमन करते हैं, और दादियों के समय में इतनी विशाल विश्व को सेवा हुई है। अभी हम थोड़े लोग आत्माएं, थोड़े लोग माने जितने भी हम लाखों आत्माएं संख्या में हैं, और अभी बचा हुआ जो भी ईश्वरीय कार्य है उसको संपन्न करना और इसको संपूर्ण करना, और बाबा का अल्टीमेट जो लक्ष्य है इस दुनिया में आकर के हर आत्मा को मुक्ति देना, जितने भी चाहे सत्युग में आने वाले ना हो परंतु उनको भी मुक्ति और जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति लेने वालों को भी जीवन मुक्ति, और हर दुखी आत्मा को और इतनी करोड़ों आत्मा को मुक्ति धाम में ले जाना। मुक्ति धाम में ले जाने वाले कौन होंगे? बाबा तो है ही है, बाबा के साथ हम बच्चे भी है, क्योंकि ये कार्य अपने बच्चों के ऊपर भी बाबा ने शेयर किया। बाबा का कार्य है, परंतु बाबा ने अपने कार्य को बच्चों के ऊपर भी रखा। क्यों रखा? बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है, बच्चों को विश्व का अधिकारी बनाना, बच्चों को विश्व का राज देना, इसके लिए उनको निमित्त बनाना। हमको केवल निमित्त बनना है, निमित्त भाव, जो निमित्त भाव होता है ऑटोमेटिकली उनको सेवा में भी निश्चिंत हो सकते। इसके लिए बाबा ने ऐसी सेवा इस समय में बच्चों को देख रहा है, बच्चों का जीवन में देख रहा है। हम सभी निमित्त बनकर के ऐसी ईश्वरीय कार्य का सुचारू रूप से चलाना है, साथ साथ में अपने आप को ऊंची स्थिति बनाया, अपने आप को बाप समान बनना, अपने आप को सिद्धि स्वरूप का अनुभव करना, अपने आप को सदा विश्राम रहना। बहुत लोग तो बिजी 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 करते, मैंने देखा दादी इतने कार्य करते थे, उसको सदा इजी भी रहती थी और सदा निश्चिंत भी रहती थी, उसको कभी चिंता का लहर लकीर भी उनके चेहरे पर नहीं आता था। बाबा का कभी इतनी बड़ा कार्य कैसे होगा, इस दुनिया कैसे चलेगा, ये परिवार कैसे चलेगा, इस यज्ञ कैसे चलेगा और एक सेवा कैसे होगा, बाबा का जीवन में कभी वो किंच थोड़ा भी नहीं आता था। बाबा निश्चिंत रहता था, क्यों? बाबा को कंबाइंड स्वरूप था, कंबाइंड स्वरूप, उस कंबाइंड स्वरूप उनको चिंता से मुक्त कर दिया। परंतु बाबा जो भी संकल्प करता था वो सिद्धि होता। इसके लिए ऐसी ब्राह्मणों के जीवन में ये अनुभव हो जाए तो ऑटोमेटिकली उनके जीवन भविष्य जो बहुत उज्जवल दिखाई देगा और हर आत्मा के आपके समीप में आने वाले, संबंध में आने वाले, आपके क्षेत्र में रहने वाले, आपके अड़ोसी पड़ोसी सभी जो है आगे किससे पास, किसके पास आएगा शांति को? आएंगे तो ढूंढ के आपके पास आएंगे, आपके घर में आएंगे, आपके माल में आएंगे, आपके स्थान पर आएंगे। ऐसे स्थान पर आकर के क्या देखेंगे? बिल्डिंग देखेंगे, किताबें देखेंगे, चित्र देखेंगे, वह हमारा जीवन की चरित्र को देखेंगे। ये सभी साधन तो है ही देखेंगे, परंतु उस सबको क्रिएट किया हुआ आप सबको देखेंगे, हम सबको देखेंगे, उनको देख करके उससे प्रेरणा मिलेंगे, उनको शक्ति मिलेगा, उनको सकाश मिलेगा, उनको वरदान मिलेगा। ऐसी वरदान देने वाले स्थिति हम बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली अभी बाबा भी इस समय में भी कहा आगे जाकर के क्यों लगेगा, कहाँ कहाँ क्यों लगेगा, एक एक व्यक्ति के जीवन के परिसर में लोगों को आकर्षित होकर के आएंगे, क्योंकि अभी दुनिया और भी बहुत दुख का पहाड़ गिरेंगे, बाबा ने बोला। इसके लिए उस परिस्थिति आपके सामने दिखाई दे रहे, दुनिया के हर देश में हर क्षेत्र में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, युद्ध की वातावरण चल रहा है। ऐसे समय पर शांति देने वाले, अंजलि देने वाले, शक्ति देने वाले, वरदान देने वाले और दिशा देने वाले हम सब बच्चे हैं। ऐसे बच्चों को ढूंढने के लिए भी आएंगे। इसके लिए आगे आने वाले दिन हमारा दिन है, हमारा दिन है, हमारा राज्य है। ऐसी राज्य की सम्मुख में सामने आपको खड़ा है और मुक्ति धाम भी सामने खड़ा है और जीवन मुक्ति की दुनिया भी सामने खड़ा है। विनाश तो पहले हुआ ही पड़ा है, वो स्थिति आपको आएगा तब कभी घबराहट नहीं, कभी चिंता नहीं, कभी किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति बना देंगे हम सभी बाप समान बन करके, धरती की सितारे, बाबा कहते हैं धरती की सितारा बन करके, आकाश को देखते हैं तो सितारों को देख करके खुश हो जाता है, हम धरती के सितारों को, चैतन्य सितारों को देख करके दुनिया भी खुश हो जाएगा। वाह बाबा कहेंगे, वाह परिवार कहेंगे, वाह ब्रह्म परिवार कहेंगे, चाहे व्यक्तित्व का नहीं अब वो शक्ति का अनुभव करेंगे। ऐसे अनुभव कराने वाले, करने वाले आप सबको, विशेष आत्मा को मुझे बहुत खुशी है। बहुत भाई बहने इस समय में समय निकाल के भट्टी कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, बॉम्बे से आए, हरियाणा से आए, और भी बहुत स्थानों से भी आकर के योग कर रहे हैं। ये इसके लिए इसका जितना भी इसका समय का लाभ करेंगे, यूज करेंगे, आप तो आगे बढ़ेंगे औरों को भी बढ़ाएंगे। ऐसे बढ़ने वालों को सूक्ष्म रूप में फरिश्ता बन करके देवता स्थिति का धारण करने वाले बाप समान बनने वाले प्रत्येक बच्चों को और बाबा की अनन्य रत्नों को मेरी तरफ से वधाई वधाई, माया की दुनिया का विदाई। ओम शांति और नमस्ते।